हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ध्रुव के सामने तारा की सच्चाई पूरी तरह आ चुकी थी। वो मौलिक मल्होत्रा की बेटी थी। मौलिक के तीन पड़ावों के मालिक होने की वजह से तारा माफिया प्रिंसेस थी। ऐसे में योग यही चाहता था कि ध्रुव तारा से शादी करे, पर ध्रुव ने साफ इनकार कर दिया था। उसने मना करने पर योग ने उसे धमकी दी कि अगर ध्रुव अपनी मर्जी से शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो योग उसे किडनैप करके जबरदस्ती उन दोनों की शादी करवा देगा। ध्रुव गुस्से में वहां से जा रहा था, लेकिन योग की बात सुनकर ध्रुव के कदम वहीं पर रुक गए थे। ध्रुव ने योग की तरफ पलटकर देखा और बेपरवाही से आइज रोल की। उसका मतलब साफ था कि चाहे योग कितनी भी जबरदस्ती कर ले, लेकिन ध्रुव तारा से शादी करने के लिए तैयार नहीं होने वाला। कैसा रहेगा जो मैं उस तारा मल्होत्रा के पास में तुम्हें भी हॉस्टेज बनाकर खड़ा कर दूं, बेबी डेविल? तुम दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी दूर हो जाएगी, और इसी बहाने दोनों शादी से पहले एक दूसरे के साथ टाइम भी बिता लोगे, युग ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। नो थैंक्स, ध्रुव ने मुंह बनाकर कहा और तेज कदमों से चलकर वहां से बाहर निकल गया। वो जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ गया था। ध्रुव को भी डर था कहीं युग सच में उसे तारा के पास ले जाकर ना बांध दे। डैड के दिमाग से ये सनक निकालनी होगी, वरना कहीं वो मेरी शादी उस तारा से न करवा दे। ऐसा करता हूँ, किसी दूसरी कंट्री में चला जाता हूँ, उनकी आंखों के सामने नहीं रहूंगा तो इनके दिमाग में ये उल्टे सीधे ख्याल भी नहीं आएंगे, ध्रुव खुद में बड़बड़ाते हुए बोला और गाड़ी की स्पीड बिल्कुल तेज कर ली। ध्रुव हॉस्पिटल में कृषा से मिलने पहुंचा। वो कृषा के पास बैठा उसके नींद से जागने का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ कृषा पर हमला करने के बाद दक्ष दो दिन बाद घर पर पहुंचा था। वो दूर रहकर योग और राणा फैमिली के बाकी मेंबर की मूवमेंट पर नजर रखे हुए था। इन दो दिनों में योग और ध्रुव पूरी तरह से शांत थे। बस हाँ, तारा उनके कब्जे में थी। उनकी तरफ से कुछ न होने पर दक्ष थोड़ा आश्वस्त हो चुका था और वो अपने डैड सम्राट मल्होत्रा से मिलने के लिए गया था। रात के लगभग एक बजे के करीब दक्ष अपने घर के अंदर दाखिल हुआ। हमेशा की तरह सम्राट उस वक्त स्टडी रूम में बैठकर कुछ फाइल्स के साथ बिजी था। सम्राट ने किसी के आने की आहट सुनी तो उसने तुरंत फाइल बंद की और दरवाजे के पास आया। सामने दक्ष खड़ा हुआ था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और चेहरे और हाथ पर बैंडेज लगे हुए थे। दक्ष, उसे देखकर सम्राट ने हैरानी से उसे दोनों हाथों से पकड़ा और फिर परेशान स्वर में कहा, पिछले दो दिनों से तुम कहाँ गायब हो और तुम्हारा कॉल भी नहीं लग रहा था। तुम्हें बता भी है तुम्हारे पीछे से क्या क्या नहीं हो गया? अचानक ध्रुव राणा की शादी रुक गई और कृषा सिंघानिया हॉस्पिटलाइज्ड, बोलते हुए सम्राट रुक गया था और अब उसे समझ आ गया कि दक्ष दो दिनों से गायब किस वजह से रहा होगा। उसने सिर हिलाकर कहा, तो ये सब तुमने किया था? अफकोर्स डैड, आखिर मेरे सिवा मेहर की शादी और कौन रोक सकता था, दक्ष ने प्राउड स्माइल के साथ कहा। इन सब के पीछे दक्ष था ये जानने के बाद खुश होने के बजाय सम्राट के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए थे। वो युग को अच्छे से जानता था, ऊपर से ये बात भी कि कृषा उसके लिए कितनी मायने रखती थी। पहले भी कृषा के चक्कर में उसने अंजलि और वरदान को बहुत बुरी मौत दी थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, इनफैक्ट तुम्हें उस लड़की के चक्कर में राणा फैमिली से सीधी दुश्मनी भी मोल नहीं लेनी चाहिए थी। फिलहाल हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम माफिया किंग से टक्कर ले सकें। हमारा बिजनेस तक ठीक से स्टेबल नहीं हो पा रहा है और तुम सीधे शेर की गुफा में हमला करने चले गए, सम्राट बोला। आप कैसे कायरों जैसी बातें कर रहे हो डैड, मुझे उससे डर नहीं लगता है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दक्ष ने उन्हें समझाते हुए कहा। फिर भी तुम्हें कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड रहना चाहिए, तुम यहां आए थे तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं बेटा? अब तक तो उसके आदमी कुत्तों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ गए होंगे, तुम्हें चोट भी उन्होंने ही पहुंचाई होगी, सम्राट ने दक्ष के आगे सवालों की झड़ी सी लगा दी थी। उनकी फिक्र भी जायज थी, दक्ष उनका इकलौता बेटा था। दक्ष ने सम्राट को हमेशा एक मजबूत आदमी के तौर पर ही देखा था। आज उसे इस तरह अपने लिए घबराते देखकर दक्ष ने गहरी सांस ली और उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर सहलाते हुए कहा, डैड प्लीज आप इस तरह फिक्र करना बंद कीजिए, वो मुझे नहीं ढूंढ रहा है, क्योंकि मैंने इस बार किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर शिकार किया है। मैं लेने कृषा सिंघानिया को टारगेट जरूर किया था, पर अटैक मैंने किसी और को निशाना बनाकर करवाया था। अब वो उसके पीछे पड़े हैं और मेरे पीछे कभी नहीं आएंगे। क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तुम्हारे किसी आदमी ने भी हमला किया है तो वो अपना मुंह जरूर खोल देगा, सम्राट ने चिढ़ते हुए कहा। और अगर मैं कहूं कि ये काम मैंने किसी आदमी से करवाने के बजाय किसी ऐसे अपने से करवाया है जिसके बाद मुझे सजा देने के बजाय ध्रुव राणा उसे बर्बाद कर देगा, तो फिर आप क्या कहेंगे? डोंट वरी डैड, मेहर मेरे पास ही आएगी। मैंने एक साथ रास्ते के कई कांटों को हटा दिया है। ऐसा समझ लीजिए कि अब वो तीन पड़ाव हमारे ही हैं। वो दिन दूर नहीं जब युग राणा की सत्ता हिलने वाली है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका कॉन्फिडेंस देखकर सम्राट को कुछ तसल्ली मिली थी। उन्होंने हां में सिर हिलाया और कहा, अच्छा ठीक है, जो भी हो मुझे तुम पर पूरा यकीन है। अब बात करना बंद करो और नहाकर खाना खाओ। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? दक्ष ने उनकी बात पर हामी भरी। उसे भी आराम करने की जरूरत थी। पिछले दो दिनों से वो उनके चक्कर में ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा था। दक्ष वहां से जा ही रहा था तभी सम्राट ने पीछे से तेज आवाज में कहा, वैसे तुमने बताया नहीं कि तुमने किसके सहारे उन पर हमला किया था? हमारा कौन सा अपना है जो अपनी जान जोखिम में लगाकर युग राणा से खतरा मोल लेगा? दक्ष के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी जब उसे तारा की शक्ल याद आई थी। कृषा को गोली मारने का उसे भी बहुत अफसोस हुआ था। और फिर दक्ष ने अपनी आंखों से देखा था जब ध्रुव तारा को मारने पर तुला हुआ था। दक्ष ने सम्राट की तरफ पलट कर कहा, तारा मिली थी मुझे डैड, आजकल उसी फैमिली के साथ रह रही थी, तो सोचा उनकी इस करीबी का थोड़ा तो फायदा मैं भी उठा लूं। आखिर बहन लगती है वो मेरी, अपने भाई के किस दिन काम आएगी? तारा का मल्होत्रा फैमिली के साथ रिश्ता जरूर था, लेकिन किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। खुद मौलिक तक ने उस रिश्ते तोड़ दिए थे, तो दक्ष और सम्राट उसके साथ क्या ही रिश्ते निभाते। चलो अच्छा किया, अब ये सारी मुसीबत उस लड़की की है, सम्राट ने बेपरवाही से जवाब दिया। वहीं स्टडी रूम के बाहर खड़े मौलिक ने उनकी बातें सुन ली थी। तारा का नाम सुनते ही उसे झटका सा लगा और साथ ही उसे ये भी समझ आ गया था आखिर दक्ष के हमला करने के बाद भी युग ने उसे कुछ किया क्यों नहीं था। ये नहीं हो सकता, उसे पता चल गया है कि तीन पड़ाव का मालिक मैं हूं और तारा मेरी बेटी। नहीं नहीं, मैंने उम्र भर तारा को जिस चीज से बचाने की कोशिश की वो उसी मुसीबत में जाकर नहीं फंस सकती है। ऊपर से उसने कृषा पर अटैक किया था तो वो लोग उसकी जान ले लेंगे, मौलिक ने घबरा कर कहा। गुस्से में उसकी मुट्ठियां कस गई थीं और वो सीधा स्टडी रूम के अंदर गया। अचानक उसे सामने देखकर दक्ष और सम्राट थोड़ा हड़बड़ा गए थे। उन्हें डर था कि कहीं मौलिक ने उनकी बात तो नहीं सुन ली थी। चाचू, इतना लेट तक आप कैसे जाग रहे हैं? आपको जल्दी सोने की आदत है, दक्ष ने अनजान बनते हुए कहा, लेकिन तभी मौलिक ने उसके मुंह पर कसकर तमाचा लगाया।
शर्म नहीं आती तुम्हें अपने ही बहन को इस तरह मौत के मुंह में डालने में? तुमने उस मासूम को मोहरा बनाया ये जानते हुए भी कि वो लोग उसकी जान ले सकते हैं, मौलिक गुस्से में जोर से चिल्लाया। उसकी परवाह कर रहे हैं जबकि आपने तो खुद उस सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, उसके वजह से आपकी पत्नी की मौत हुई थी, उसके बावजूद आज आपको उसकी फिक्र सता रही है। अरे आपको पता तक नहीं कि वो दिखती कैसी है और आज उसके लिए आप मुझ पर हाथ उठा रहे हो? दक्ष भी गुस्से में पागल हो चुका था। हाँ, क्योंकि तुमने मेरी बेटी को मैनिपुलेट किया, वो कैसी भी क्यों ना दिखती हो लेकिन मैंने कभी उसका फायदा नहीं उठाया। जब दिया की मौत हुई थी तब तुम लोगों ने उसकी जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया था और यही कहा था कि मैं उसे उसके मामा के पास छोड़ाऊं, तो अब किस हक से तुम उसे वापस मिलने गए थे? तुम लोगों को पता भी है कि तुम्हारी इस चाल की वजह से मेरी बेटी कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। तुम लोग अपनी घटिया हरकतों से कभी बाज नहीं आओगे, मौलिक ने उन्हें गुस्से में अच्छा खासा सुना दिया और फिर वहां से बाहर आ गया था। अपने कमरे में आते ही मौलिक ने सबसे पहले अपने भरोसेमंद आदमी को कॉल किया और कहा, अश्विन पता करो तारा कहाँ है। ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, उसके आदमी अश्विन ने जवाब दिया और फिर कॉल कट गया था। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अश्विन के कुछ पता लगाने का इंतजार करूं, मुझे युग राणा से मिलना ही होगा। अगर उसे वो तीन पड़ाव चाहिए तो बेशक ले ले, लेकिन मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दे। सोचा था उससे दूर रहूंगा तो उसके ऊपर मुसीबतें नहीं आएंगी, लेकिन ये सब क्या हो गया? मुझे माफ कर देना दिया, मैं तुम्हारी इकलौती निशानी हमारी बेटी का ख्याल नहीं रख पाया। अब तक दिल पर पत्थर रख रखा था कि वो मुझसे दूर जाएगी तो खुश रहेगी, पर किसे पता था कि आज मेरे ही घरवाले उसे मुसीबत में डाल देंगे, मौलिक ने सिर पकड़कर कहा। वो बहुत ही इमोशनल इंसान था, ये तीन पड़ाव माफिया किंग बनना वो कभी नहीं चाहता था, लेकिन ये सब जबरदस्ती उसके गले आ गया था। मौलिक ने हमेशा अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार अपनी पत्नी दिया और तारा से किया था। दिया की मौत हो जाने के बाद अचानक तीन पड़ावों की जिम्मेदारी उस पर आ गई। ऊपर से जिसने भी उसे ये सब सौंपा था उसने जान पहचान कर तारा को उन सबका पासवर्ड सेट किया था ताकि वो मौलिक को हमेशा ब्लैकमेल कर सके। तारा की सुरक्षा के लिए ही मौलिक ने तारा से कड़वी बातें कहीं और उससे दूर हो गया, पर किसे पता था कि तारा की किस्मत उसे माफिया की दुनिया में ले ही जाएगी। मौलिक तुरंत युग से मिलने के लिए उसके विला के लिए निकल चुका था, तो वहीं देर रात को कृषा को पूरी तरह होश आ चुका था। उसके सभी जरूरी चेकअप किए जा रहे थे ताकि राणा फैमिली उससे मिल सके। ध्रुव और योग बेसब्री से डॉक्टर के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। उनके साथ में याशी भी थी। वहीं दूसरी तरफ योग के टॉर्चर एरिया में तारा पूरे दो दिनों से भूखी और प्यासी थी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो ठीक से खड़ी तक नहीं रह पा रही थी। उसकी निगरानी के लिए वीर को रखा गया था। तारा की हालत देखकर वीर को दया तो बहुत आ रही थी, लेकिन तारा ने जो किया था उसके बाद वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में था। प्लीज प्लीज पानी दे दो, आई रिक्वेस्ट यू, वरना मैं मर जाऊंगी, तारा टूटे फूटे शब्दों में बोल रही थी। वीर उसके पास आया और बोला, ध्रुव की परमिशन के बिना तो मैं तुम्हें जहर भी नहीं दे सकता। मर जाऊंगी तो मर जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि तुमने जो किया है उसकी कोई माफी नहीं है। तुम्हें अपना समझा था तारा, और तुमने क्या किया? तुम लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते हो? मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे नहीं पता था सामने कृष खड़ी थी, वरना मैं क्यों शूट करती, तारा ने रोते हुए कहा। ये तो बात की बात है, धोखा तो तुम पहले दिन से दे रही हो। यकीन नहीं होता कि तुम दक्ष मल्होत्रा की बहन हो और तुमने कृषा आंटी को शूट कर दिया, वो भी उसके कहने पर, वीर ने दांत पीसते हुए कहा। हालांकि वीर अपनी तरफ से तारा से बात कर रहा था, लेकिन टॉर्चर रूम के दरवाजे पर खड़ी अलीजा ने सब सुन लिया था। अलीजा पता लगाने आई थी कि आखिर त्रिशा कृषा की इस हालत के पीछे कौन जिम्मेदार था, लेकिन टॉर्चर रूम पर खड़े होकर सारी बात सुनने के बाद उसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। तारा पर उसे पहले ही शक था। ऊपर से तारा का नाम इस मामले में निकल कर आने पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। अलीजा जल्दी से दौड़ते हुए नीचे आई। वीर इससे पहले कि उससे कुछ पूछ पाता, तारा ने अपने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था और वो सीधा उसने तारा के पेट में घोंप दिया था। तारा दर्द से जोर से चिल्लाई, तो वहीं उसके स्टेप से भी पूरी तरह अनजान वीर भी हैरान रह गया था।